ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्मणाया विशाम्पते उच्यमानामया दृष्टा असत्चित्तगते पुरा सृष्टा ही ओषधयो ब्रह्मणाया विशाम्पते उच्यमाना मया दृष्टा सद्भिरर्चितव्रते पुरा सृष्टा ही ओषधयो ब्रह्मणाया विशाम्पते उच्यमाना मया दृष्टा ब्रह्मणा ब्रह्मा द्वारा यह वेचो विशाम्पते हे राजा भुज्यमानाः भोग किया गया मया मेरे द्वारा दृष्टा देखा गया असिद्धि ही अभक्तों द्वारा अर्चित व्रते समस्त आध्यात्मिक कृत्यों से शून्य अनुवाद अर्थ तात्पर्य शत्रुपाद द्वारा शत्रुपाद की हे राजन प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान में से शून्य पद रही। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों मूलों जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य है। ब्रह्मा ने इस भौतिक जगत की सृष्टि जीवात्माओं के उपयोग के लिए तो की थी, किंतु सृष्टि इस व्यवस्था के अनुसार हुई थी कि वे समस्त जीवात्माओं जो इसमें इंद्र तृप्ति के लिए आएंगी, उन्हें ब्रह्मा जी वेदों की शिक्षा देंगे, जिससे वे भगवान इस संसार को छोड़कर के धाम को वापस जा सके, जिससे वे भगवान इस संसार को छोड़कर के धाम को वापस जा सके। पृथ्वी पर उगलने वाले सभी आवश्यक वस्तुएं तथा यथा फल फूल वृक्ष अन्न पशु इत्यादि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने के निमित्त उत्पन्न की गई थी, किंतु गोरु पृथ्वी निवेदन कर रही है कि यह समस्त सुविधाएं ऐसे अभक्तों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं, जिनके पास आत्मज्ञान के लिए कोई योजना नहीं है। यद्यपि पृथ्वी में अन्न फल तथा फूल उत्पन्न करने की अपार क्षमता है, किंतु जब अभक्तों द्वारा जिनका की कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है इनका उपयोग होने लगता है, तो पृथ्वी स्वयं इन सबका उत्पादन रोक देती है। हर वस्तु भगवान की है, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है। वस्तुओं का उपयोग जीवात्माओं की इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं होना चाहिए। इस भौतिक प्रकृति के आदेश अनुसार यही प्रकृति की पूरी व्यवस्था है। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण है, असित विधि तथा अद्विता विषय। असत ही का तात्पर्य अभक्त है। भगवद गीता में अभक्तों की दृष्टि अभक्तों को दुष्कृतिनः यानी दुष्ट, मूढ़ा यानी गधे या धूर्त, नराधम मनुष्यों में सबसे पति तथा माया अपरित ज्ञानम, वे जिन्होंने माया शक्ति के कारण ज्ञान खो दिया है कहा गया है। ये सभी असत अर्थात अभक्त लोग हैं। अभक्तों को गृहव्रत भी कहा गया है, जबकि भक्त धृतव्रत कहलाते हैं। समस्त वैदिक व्यवस्था यही है कि दिग्भ्रमित बद्ध जीवों को जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने आए हैं धृतव्रत बनने की शिक्षा दी जाए। इसका अर्थ यह हुआ उन्हें इसका व्रत लेना चाहिए कि वे परमेश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करके ही अपना इंद्रियों की तुष्टि करेंगे या भौतिक जीवन का सुख भोगेंगे। परमेश्वर श्री कृष्ण की इंद्रिय तुष्टि के लिए किए गए कार्यकलाप कृष्णार्थे अखिल चेष्टाः कहलाते हैं। इससे यह सूचित होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, किंतु ये सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। भगवद गीता में इसे यज्ञार्थ कर्म कहा गया है। यज्ञ शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है। हमें केवल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, किंतु आधुनिक युग कलयुग में लोगों ने विष्णु को एकदम भुला दिया है और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग क्रमशः निर्धन होते जाएंगे, क्योंकि वे उन वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए उपयोग न कर सकेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उपभोग्य है। यदि वे ऐसा ही करते रहे तो अंततः निर्धनता आ जाएगी और अन्न फल या फूल नहीं उत्पन्न होंगे। भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है कि कलयुग के अंत में लोग इतने दूषित हो चुके होंगे कि अन्न गेहूं गन्ना या दूध कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। बहुत सुंदर श्लोक है तात्पर्य प्रभुपाद जी का, विशेष करके बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे पृथ्वी कह रही है पृथ्वी महाराज से कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो अभक्त लोग हैं वो इनका उपभोग कर रहे हैं, किनका अन्न फल जड़ी बूटी, तो ये सब का अभक्त लोग क्या करते हैं, वो केवल अपने नेतृत्व में लगाते हैं, इसलिए पृथ्वी कहती है इसलिए मैं सबको ढक दी थी। तो इसमें तात्पर्य बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है उसका क्या उद्देश्य है, भगवान की प्रसन्नता की, क्योंकि सब भगवान का है, उन्हीं की संपत्ति है, तो उन्हीं की उन्हीं के द्वारा वो उपभोग है। लेकिन ये सृष्टि बनाई किस लिए गई है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो खुद का इंद्रवृत्ति करना चाहते हैं, तो अगर एकदम से उन्हें रोक देंगे नहीं, कुछ भी इंद्रवृत्ति नहीं करो तो संभव नहीं है, सृष्टि की कारण ही यही है कि जो जीवात्मा भगवान से अलग होके भोग करना चाहते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने बहुत कुशलतापूर्वक क्या बनाया, उन्होंने वेद की रचना की, ताकि जो साधारण लोग हैं वो अपनी इंद्रियुक्ति करें लेकिन भगवान को केंद्र में रखें। द्रौपदी जी कहते हैं कि भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करके साथ साथ अपनी इंद्रिय को तुष्ट करेंगे वो चलेगा। सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड तो ये है, जैसे जो गोस्वामी है या उन्नत भक्त है वो केवल भगवान की ही संतुष्टि के लिए सब कुछ करते हैं, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति का उनका कोई अभिलाषा नहीं होगा। लेकिन साधारण लोग को क्या करना चाहिए कि भगवान की इंद्रिय तृप्ति भगवान को केंद्र में रखे और साथ साथ जो अपनी इंद्रिय तृप्ति हो वो ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल क्या हो रहा है कि भगवान को संपूर्ण रूप से लोग भूल चुके हैं, केवल अपने ही इंद्रियुक्ति में लगे, ये कलयुग का लक्षण है। ये कथा तो कलयुग की नहीं है लेकिन उस समय भी ऐसा हुआ था, और कलयुग में तो विशेष करके यही लोग करते हैं, भगवान को तो केंद्र में रखना दूर, अधिकतर लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, बोलते भी भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो ये दुर्भाग्य है कलयुग का। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, देखिए कलयुग में लोग विष्णु को एकदम भुला गया है, तो मुझे फुल्ली फॉरगॉट एकदम से भुला गया, और वे इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो एकमात्र क्या उद्देश्य है लोग जो कार्य करते हैं, अपनी इंद्रिय, कम से कम पहले जो वर्णाश्रम धर्म में जो लोग कार्य करते थे वो किस लिए करते थे, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, यज्ञार्थ कर्मण्यो नश्यति, जिससे भगवान गीता में, तो कम से कम ये चेतना थी लोगों में, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। लेकिन कलयुग का तो बात छोड़िए, इसमें लोग भगवान को मानते ही नहीं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए कैसे कार्य करें, और सब कुछ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाते हैं, और इसीलिए पृथ्वी इन सारी चीजों को धीरे धीरे समेट रही है। लोग कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि ये दुनिया में कमी है किस चीज की, अच्छे से खाना नहीं है, या नहीं कमी कोई चीज की नहीं, पृथ्वी चाहे तो पृथ्वी माँ है, वो हर तरह से सब कुछ संतुष्ट रखती है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि लोग कहते हैं ओवर पॉपुलेशन की जनसंख्या बहुत बढ़ गई, नहीं पृथ्वी माँ के लिए चाहे अरबों अरबों जीव भी रहे यहाँ पे तो कोई जनसंख्या की कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जब समस्या क्या है, जब लोग नास्तिक बन जाते हैं, जब लोग भक्त नहीं बनते तब उनका लालन पोषण पृथ्वी माँ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उन पर एक बोझ बन के जीते हैं, पाप करते हैं और केवल शोषण करते हैं पृथ्वी का। जैसे आजकल हो रहा है, लोग कह रहे हैं इतनी जो वातावरण में एनवायरमेंट प्रॉब्लम सब है, किस लिए शोषण करेंगे पृथ्वी, हर कोई उसी में लगा कैसे अधिक से अधिक शोषण करे पृथ्वी का और जो हमारे प्राकृतिक संपदा है उसके शोषण में लगे, और इसलिए धीरे धीरे पृथ्वी अपनी संपदा को धीरे धीरे समेट ली। और प्रभुपाद जी कहते हैं आगे चल के अभी तो फिर भी हम लोग ठीक समय पे है, कम से कम अन्न है, हालांकि वो फर्टिलाइजर का बना है यूरिया है, लेकिन कम से कम अन्न तो है, दूध है, चीनी है, लेकिन धीरे धीरे कलयुग में वो भी बंद हो जाएगा, अन्न नहीं रहेगा, दूध नहीं रहेगा, गेहूं गन्ना नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी कहते बहुत ही खराब समय आगे कलयुग में आने वाला है। तो लेकिन ये कलयुग की विशेषता क्या है, कलयुग तो आप सब जानते हैं क्या विशेषता है कलयुग की, हरिनाम, चैतन्य महाप्रभु आए, ये विशेषता है। इसलिए कई बार सब भक्त धन्य कलयुग कि कलयुग की साधारण कली नहीं है, हालांकि इसमें बहुत सारे असुविधाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग। जैसा आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, वो हर कलयुग हर द्वापर युग में नहीं आते। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं, 1000 चतुर्युग, है ना, आपने सुना होगा, एक चतुर्युग यानी सत्य त्रेता द्वापर कलि, चारों युग को मिला के जो कहते हैं उसे कहते हैं एक चतुर्युग। तो एक चतुर्युग का जो काल कितना होता है, 43 लाख। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं, 1000। ब्रह्मा जी के एक दिन में इसे 1000 चतुर्युग होते हैं, लेकिन जो जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है गोलोक वृंदावन से, वो केवल एक ही चतुर्युग में आते हैं, और वो हम इतने भाग्यशाली हैं कि वो इसी द्वापर में आए थे, जिस इस कली के पहले द्वापर में। तो किसमें आते हैं, वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में आते हैं। सब जानते ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनु आते हैं, इसमें से जो बीच वाले 7वें मनु है वैवस्वत मनु, जिनका कि अभी समय चल रहा है, उनके 28वें चतुर्युग जो कि अभी चल रहे हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, और उसी चतुर्युग के कलयुग में फिर भगवान कृष्ण आते हैं किस रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो हर कलयुग में नहीं आते, इसलिए ये कलयुग विशेष रूप से बहुत ही स्पेशल विशेष कलयुग। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हम इस कलयुग में जन्मे, और साथ ही साथ हम और भी ज्यादा भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी इस कलयुग में आए। मैं सुन रहा था कल ही कोई भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी भी हर कलयुग में नहीं है, इस कलयुग और भी स्पेशल है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद में प्रभुपाद जी आए और पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को उन्होंने प्रचार किया और हम उनकी संस्था से जुड़े हैं, तो भला हमसे भाग्यशाली और कौन होगा। हालांकि हम कलयुग के जीव है कि हम मंद भागा, लेकिन हम सबसे महान भाग्य वाले हैं, क्योंकि हालांकि हम कलयुग में आए लेकिन हम बिल्कुल ठीक समय में आए हैं और हमें कृपा मिली भक्तों की और प्रभुपाद जी की। इससे हमारा बहुत बहुत हम भाग्यवान है कि हम इस समय में आए। हमें क्या करना चाहिए, हम अच्छी तरह से पंचतत्व का आश्रय लेके हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। तो कल श्रीवास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस था और बहुत आपने सुना भी होगा श्रीवास ठाकुर के बारे में, इसी कल रात में मुझे धर्मात्म ने बताया क्लास के लिए, तो मैंने लगा चलो ठीक है थोड़ा श्रीवास ठाकुर जी के बारे में आपके आगे हम तो कुछ बताएं, क्योंकि कल श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव दिवस था और कल इंग्लिश में क्लास सुन रहा था जनानंद महाराज जी, बहुत सुंदर क्लास दिया उन्होंने, तो मैंने सोचा कि आप सबसे भी कुछ श्रीवास ठाकुर की लीलाओं के बारे में 15-20 में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो महाराज जी एक बहुत सुंदर श्लोक लिए थे चैतन्य चैतन्य के आदि लीला का 7वां अध्याय पंचतत्व जिसका नाम है, तो उसमें पंचतत्व के महिमा का वर्णन किया गया। प्रभुपाद जी कहते थे बहुत विशेष अध्याय हम सबके लिए, और डीवीटी ने उस अध्याय को केवल एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाश किया है, पंच तत्व नाम, तो इतना महत्वपूर्ण है वो अध्याय हमारे लिए। तो उसका एक श्लोक जनानंद महाराज कल समझा रहे थे, तो उसमें कहते हैं कि कैसे महाप्रभु पंच तत्व के साथ आए हैं, क्या करने के लिए, इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार। जैसे आप सब भागवत का प्रसिद्ध श्लोक जानते हैं, कृष्णा वर्णन तिसार कृष्ण सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सु मेधा। तो कृष्णा वर्णन तिसार कृष्ण सांग पांगास्त्र, तो अपने साथ सारे अपने जो संग और सारे महाप्रभु अकेले नहीं आते, अपने साथ अपने सारे भक्तों पार्षद के साथ आते। तो ये मेन पार्षद इसमें से कौन है, पंच तत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त। रूपा जी कहते हैं हमें पंच तत्व का शरण लेना चाहिए। तात्पर्य में समझाते हैं श्लोक में कि कई बार कई भक्त हैं जो नए नए मंत्र निकालते, आपने सुना होगा निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, या जय श्री कृष्ण चैतन्य और राधे कृष्ण गोविंद, ऐसे कई सारे लोग भक्त मंत्र निकाल, ठीक है कम से कम भगवान का नाम है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ नए तरकीब नहीं ढूंढना चाहिए, हमें केवल पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण इसका जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जरूर से महामंत्र जप करने के पहले हमें पंचतत्व मंत्र का जप करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे हम पंचतत्व का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम महामंत्र जप कर सकते हैं। और एक लाभ क्या है कि हरिनाम में तो कई सारे अपराध हैं, 10 अपराध, लेकिन महाप्रभु के नाम में, चैतन्य महाप्रभु के नाम में पंचतत्व मंत्र में कोई अपराध नहीं है। तो इसलिए हमें बड़े ध्यान पूर्वक चाहे हम कीर्तन करें या जप करें, पहले हमें क्या करना चाहिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, उसके बाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। इस पे जोर दे रहे थे इस बात पे कि हमें पंचतत्व मंत्र का जरूर जप करना चाहिए और उसके बाद महामंत्र कीर्तन करना चाहिए, यही शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु। तो शिवाज ठाकुर जैसे आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से वो कई साल पहले आए, काफी बड़े थे उम्र में चैतन्य महाप्रभु से शिवाज ठाकुर, तो कई सारे महाप्रभु के जो विशेष भक्त थे वो महाप्रभु के कई साल पहले ही आ गए, अद्वैत आचार्य शिवाज ठाकुर हरिदास ठाकुर सब पहले ही प्रकट हुए। तो शिवाज ठाकुर इसलिए महाप्रभु उनको अपने पिता के रूप में प्रेम करते थे, इस भाव से देखते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब सारे भक्त प्रकट हो गए, अद्वैत आचार्य शिवाज ठाकुर हरिदास ठाकुर, तो उनके मन में बड़ी कष्ट कष्ट हुआ उनको देखे, जैसा हम श्लोक में पढ़ रहे हैं कलयुग के लक्षण देख के कि सारे लोग इंद्रधनुष में लगे थे। ये कब की बात है, 500 साल पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। तो उस समय भी यही हाल था, देखते थे नवदीप में सब लोग केवल इंद्रधनुष में लगे हैं, बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कर रहे हैं और पता नहीं नाग की पूजा ये वो, मतलब बिल्कुल भौतिक बात में लगे थे, भक्ति का तो कहीं कोई नाम ही नहीं था। अगर कोई वेद से पढ़ते भी थे, कोई गीता भागवत भी कहीं चर्चा होती थी, उसमें भक्ति का नाम कहीं नहीं लिया जाता था, तो बिल्कुल भक्ति शून्य संसार था और सब इंद्रधनुष में लगे थे। और ये अवस्था को देख के वैष्णव के हृदय में बहुत दुख, अद्वैत आचार्य शिवाज ठाकुर हरिदास ठाकुर तो सब अपने हृदय से पुकार रहे थे, हे प्रभु हे कृष्ण आपको आना ही पड़ेगा इन सब जीवों का उद्धार करने के लिए। तो शिवाज ठाकुर भी इस प्रकार पुकारते थे। और जैसा आप जानते हैं सब कई सारे कारण है महाप्रभु के अवतीर्ण होने के, उनमें से एक कारण ये भी है कि अद्वैत आचार्य और सब भक्त लोग जो उनको पुकारे, इसलिए महाप्रभु प्रकट हुए। तो महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ तो सारे भक्त बहुत प्रसन्न हुए। आप सब सुने हैं सब लीला, कहते हैं अद्वैत आचार्य सीता ठाकुरानी आई सब महाप्रभु के लेके, मालिनी जो शिवाज ठाकुर की पत्नी थी, सब बहुत प्रसन्न हुए जब महाप्रभु प्रकट हुए। लेकिन महाप्रभु जब बाल्य रूप में जब निमाई के लीला कर रहे थे, निमाई पंडित की लीला, तो उसमें वो भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, बाहर से ऐसा दिखता था मानो वो केवल एक विद्वान, केवल संस्कृत की बात करते थे, व्याकरण की बात करते थे, सारे भक्तों से वो वाद विवाद करते थे, केवल इसी में लगे थे। तो भक्तों में बड़ा कष्ट होता था, देखिए ये खैर ये भगवान की योगमाया ही है कि भक्त पहचान नहीं पा रहे थे, तो लगे थे निमाई इतना सुंदर बालक है, हम इतने आकृष्ट हैं इनके प्रति, इतने विद्वान ही है, अगर ये भक्ति करते तो कितना अच्छा होता, क्या फालतू ज्ञान में लगे। तो सारे भक्तों के मन में बहुत दुख होता था। तो श्रीवास ठाकुर भी एक बार मिले महाप्रभु से और बोले निमाई क्या कर रहे हो, क्या क्या लक्ष्य उद्देश्य क्या है इतनी पढ़ाई का, इतने ज्ञान का, अगर कृष्ण भक्ति नहीं करे तो सब अव्यर्थ है, सॉरी सब व्यर्थ है, सब बेकार है। तो फिर निमाई पंडित बोलते हैं बड़े विनम्र भाव से कि आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कभी भक्त बन पाऊं। तो इस तरह से निमाई सबके साथ आप जानते हैं सब बहुत सुंदर लीला की, निमाई पंडित बन के विख्यात हो गए, केशव कश्मीर को उन्हें प्राप्त किया, तो ख्याति हर जगह फैल गई कि निमाई बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े पंडित है, कोई उनके सामने देख नहीं सकता था। लेकिन महाप्रभु का असली उद्देश्य क्या था, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। तो महाप्रभु ने संकीर्तन लीला कब शुरू की, जब वो कहाँ गए, गया, जब गया जाके वो वापस आए, तो गया में जब गए तो वही महाप्रभु सबसे पहली बार भक्ति भक्ति के लक्षण का उन्होंने प्रकाश किया, अपने जो महाभाव का उन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया जब वो गया गए, क्योंकि गया में क्या है, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, उनको देख के महाप्रभु तुरंत भक्ति के लक्षण का प्रदर्शन उन्होंने किया, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, क्योंकि जब महाप्रभु वहां पे गए तो वहां ब्राह्मण स्तुति कर रहे थे भगवान के पाद पद्म, गया को कहते हैं पाद पद्म तीर्थ, तो स्तुति कर रहे थे कि भगवान के चरण कितने महान है, उन्हीं चरण कमलों से गंगा जी प्रकट हुई है, उन्हीं वही गंगा जी को शिव जी अपने सर पे धारण करते हैं, सारे देवी देवता सब भगवान के चरणों का पूजा करते, तो भगवान के चरण कमलों की वो स्तुति कर रहे। और ये सुन के महाप्रभु बिल्कुल भाव विभोर हो गए और आंखों से अश्रु धारा बहने लगे और भक्ति के लक्षण को उन्होंने पहली बार सबके सामने उन्होंने प्रकट किया। और वहां पर उनको कौन मिली, ईश्वरपुरी, और फिर उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया, और फिर जब वापस लौटे नवद्वीप में तो निमाई बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुके, कोई दशा नहीं मरे वही निमाई है, बिल्कुल बदल चुके, जहां जब देखो जब कुथा कृष्ण कुथा कृष्ण, कृष्ण भी घर में रहते थे और कुछ भी कहते थे वो कृष्ण के बारे में कहते थे, तो तुरंत ये समाचार हर जगह बहुत तेजी से फैल गया, अरे निमाई पंडित तो महान कृष्ण बन गए। तो सुबह क्या होता था कि शिवाज ठाकुर के घर में बहुत सुंदर एक फूल का बगीचा था, उसमें सुंदर फूल कुंद के फूल का पेड़ था, कहते वो कल्प वृक्ष के समान था, कितने भी फूल चाहे उसमें से तोड़ लो फूल कभी उसमें खत्म नहीं होगी। तो हर दिन सुबह सारे वैष्णव वहां पे एकत्रित होते थे, क्या करने के लिए, फूल तोड़ने के लिए। तो कितने अच्छे थे हम लोग, तो सौभाग्य नहीं हम लोग तो बस माला खरीद के लाके भगवान को अर्पण करते हैं, तो कितना भक्ति है इसमें, हम लोग सुबह जाते थे, आज भी कई बार ऐसे गांव में ऐसे लोग करते हैं कि सुबह जाके खुद अपने हाथों से फूल तोड़ के लाना और माला बना के भगवान को अर्पण करना। तो सारे महान वैष्णव, ये नहीं कि कोई नए भक्त, हम सोचते हैं कि ये सब जो सेवा है ये सब नए भक्तों की सेवा, नहीं, सब महान महान शिवाज ठाकुर श्रीमान पंडित सारे महान महान वैष्णव गदाधर पंडित सब क्या सेवा करते थे, सुबह सुबह जाके फूल तोड़ के लाते थे, और फूल तोड़ते समय वो क्या करते थे, प्रजत नहीं वो कृष्ण कथा करते थे, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए वो फूल तोड़ के लाते थे। तो एक तो जब महाप्रभु जब आए जब ये खबर, तो उसके अगले दिन सब भक्त लोग फूल तोड़ रहे थे, तो श्रीमान पंडित बहुत प्रसन्न होकर आए और बोले कि बहुत ही शुभ समाचार आप सबके लिए है। तो सर्वेश्वर से क्या समाचार है, कि निमाई पंडित भक्त बन गए, महान वैष्णव बन गए, बताने लगे कि जब गया से आए कैसे वो भगवान के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं, कैसे उनके आंखों से अश्रु धारा बह रही, हर समय वो कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं, बताते बताते कृष्ण का नाम लेते लेते वो मूर्छित हो जाते हैं। तो जब सारे वैष्णव ऐसा सुने तो बहुत प्रसन्न हुए, और शिवा ठाकुर ने उस समय कहा कि भक्तों की संख्या, भक्तों का समाज या भक्तों का परिवार बढ़ता रहे, वो कहते हैं कि गोत्र बढ़ो, मतलब भक्तों का जो गोत्र है वो बढ़ता रहे, तो ये आशीर्वाद देखे इन्होंने शिवा ठाकुर, देखिए उनके मन में क्या भावना है, कैसे सब लोग भक्त बन जाए, तो यही हम सबकी भावना होनी चाहिए, प्रभुपाद जी की जो भावना है कि कैसे सब ज्यादा से ज्यादा भक्त बने। तो बहुत प्रसन्न हुए शिवा ठाकुर की निमाई भक्त बन गए, क्योंकि सारे वैष्णव चाहते ही थे, सब ऑलरेडी सब पहले से महाप्रभु के प्रति बहुत आकर्षित थे, तो सब भक्त बहुत प्रसन्न हुए कि निमाई भक्त बन गए। और फिर धीरे धीरे आप सब जानते हैं कि बहुत ही जल्दी सारे जो पार्षद है वो इकट्ठे हो गए, अद्वैताचार्य आ गए, हरदास ठाकुर नित्यानंद आए, इस प्रकार सारे पंचों पर एकत्रित हो गए, और कहाँ पे कीर्तन करते थे, शिवाज आंगन। तो प्रभुपाद जी एक बार समझाते हैं कि जिस तरह भगवान कृष्ण प्रकट हुए कहाँ पे, मथुरा में, लेकिन सारी लीलाएं कहाँ पे किए, वृंदावन में, गोकुल में। उसी प्रकार हालांकि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ सची आंगन में, सची माता के घर में, लेकिन उनके जो मेन जो सारे जो मधुर लीला है वो सब कहाँ किए? श्रीवास आंगन। तो देखिये श्रीवास ठाकुर का कितना महान भाग्य है कि उन्हीं के घर में महाप्रभु ने अपनी सबसे घनिष्ठ जो अंतरंग लीला है वो उन्होंने श्रीवास के आंगन में किया, श्रीवास ठाकुर के। तो सर जानते हैं श्रीवास ठाकुर कौन है? स्वयं नारद भक्ति, जो पंचतत्वों में अलग अलग तत्वों का वर्णन है। तो भक्त कौन है उनमें से? श्रीवास। तो सब भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए महाप्रभु उन्हीं के घर में सारे अंतरंग लीला किए गए। कौन कौन से लीला? बहुत सारे लीला आप सब सुने होंगे कि अनेक महाप्रकाश लीला जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? श्रीवास ठाकुर के घर में। सारे बहुत लीला सब श्रीवास आंगन में हुआ। और इसलिए आप देखिए ना, हमारे जो मायापुर जो मंदिर है प्रभुपाद जी, कई भक्त उस समय मैं सुन रहा था, कोई बता रहे थे कि उससे भक्त लोग कह रहे थे कि प्रभुपाद हमारा जमीन तो काफी दूर है योगपीठ से। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, हमारे यहाँ पे मायापुर का जमीन है, वहीं पंच तत्व नित्य किया करते थे क्योंकि वो बिल्कुल श्रीवास आंगन के पास में। तो जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है लीला, तो इसलिए महाप्रभु ने सारे लीला श्रीवास के आंगन में किया। देखिए भाग्य देखिए श्रीवास ठाकुर का। तो एक बार क्या हुआ, जब शुरू में जब निमाई इस रूप में आए महाभाव का प्रदर्शन कर रहे थे, तो सची माता को बड़ा बहुत चिंतित हो गए। सची माता कह रही, क्या हुआ मेरे बेटे निमाई को? हर समय कृष्ण कृष्ण करता रहता है पागलों की तरह, कभी हंसता है तो घंटों हंसता ही जाता है, कभी रोता है तो घंटों घंटों तक रोता जाता है, कभी मूर्छित हो जाता है, क्या हो गया मेरे निमाई को? सबसे पूछने लगी, अरे निमाई को क्या बीमारी है बताओ। तो कोई वैद्य आते थे, किसी ने कहा इनको वात की बीमारी है, किसी ने कहा इनको इनको विष्णु तेल की आवश्यकता है, किसी ने कहा नहीं विष्णु तेल नहीं शिव घी की आवश्यकता है। तो ऐसे थे सब आके, सब अपना अपना वो, किसने कहा इनके हाथ पांव बांध दो क्योंकि वात की बीमारी बहुत खतरनाक है, पता नहीं जाके क्या कर लेगा ये। तो सची माता तो बड़ी चिंतित हो गई, क्या हो गया मेरे निमाई को। तो एक बार श्रीवास ठाकुर उनके घर पे आए, तो सची माता ने श्रीवास को पूछा, श्रीवास आप तो इतने विद्वान है, इतने महान भक्त है, आप बताइए कि क्या हुआ मेरे निमाई को। तो फिर श्रीवास ठाकुर ने कहा कि आई सची माता, आप तो बहुत भाग्यवान है कि इतने महान भक्त है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, केवल शुद्ध कृष्ण प्रेम का लक्ष्य है जो कि जीवन का उद्देश्य है, जो परम जो स्टेज है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति, भक्ति की चरम सीमा का के लक्षण है ये जो आपके बेटे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए। तो ये शिवाज ठाकुर के मुंह से सुनने के बाद सची माता के मन में बड़ा संतोष है। उसके पहले बड़ी व्याकुल हो गई थी, क्या हो गया मेरे निमाई को, लेकिन क्योंकि शिवाज ठाकुर इतने सम्मान करते थे सब उनको, तो सची माता वो बड़े प्रसन्न हो गए और महाप्रभु भी प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने कहा अगर शिवाज अगर आप भी बोल देते कि मेरे को बीमारी है बात की बीमारी, तो मैं शरीर छोड़ देता। तो फिर सब बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बार जैसा आप जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु कहाँ रहते थे, जब वो आ गए नवदीप श्रीवास के घर में रहते थे, मालिनी देवी उनको बच्चे की तरह उनका देखभाल करते थे। तो एक बार महाप्रभु आए और परीक्षा लिए श्रीवास ठाकुर का, बोले कि अरे श्रीवास तुम इतने महान ब्राह्मण हो, ये नित्यानंद कौन है पता नहीं, अवधूत है, इसका कोई जाति का ठीक नहीं, कोई कुल का ठीक नहीं, तुम इसको अपने घर में रख रहे हो, तुम्हें थोड़ी भी परवाह नहीं है लोग समाज क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो शिवाज समझ गए कि आप मेरी परीक्षा ले रहे प्रभु, नित्यानंद तो आपके प्राण से भी अधिक प्रिय है, और नित्यानंद की मैं सेवा नहीं करूंगा तो क्या गति होगी मेरी। तो कहते हैं कि अगर नित्यानंद अगर शराब की जगह में भी जाए फिर भी मैं नित्यानंद की सेवा नहीं छोड़ूंगा। और जब महापुरुष सुने तो बहुत प्रसन्न हुए शिवाज ठाकुर, बोले शिवाज तुमने मुझे बहुत पसंद कर दिया, जो नित्यानंद के प्रति जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा और प्रेम है इससे मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। और फिर महापुरुष वरदान देते हैं, दो वरदान देते हैं, कहते हैं अगर लक्ष्मी जी को भी कभी कोई चीज की कमी हो सकती है लेकिन तुम्हारे पास कोई चीज की कभी कमी नहीं रही, पहला वरदान। और दूसरा कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो कुत्ते हैं चंडाल कोई भी है, सेवक नौकर है चाकर है, हर जो भी तुमसे किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है उन सबका उद्धार, सबको कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा। ये कितना महान आशीर्वाद है। यही है एक्चुअली शिक्षा कि हम डायरेक्ट भगवान से महापुरुष से हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, उनके भक्तों से, तो हमें उनके भक्तों का पुत्र के समान बनना पड़ेगा तब हमें महापुरुष की बात प्राप्त होगी। ऐसा बाद में हुआ भी है, आप देखे होंगे कई तरह से लीलाएं हैं कि शिवाज ठाकुर के जो संबंधी हुए हैं, क्या क्या नाम है उनका, नलिनी है ना, जो वृंदावन दास ठाकुर की माँ नारायण नारायण, तो नारायण की छोटी सी बच्ची थी, उनको वहां उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। एक उनकी दासी थी, उनका नाम क्या था, दुखी। अब तो वो कल महाराज वो भी बता रहे थे कि छोटी सी लीला है, जैसा जानते हैं महाप्रभु कीर्तन क्या करते थे सुभाष ठाकुर के आंगन में, तो कीर्तन करते करते वो कई बार बहुत थक जाते थे या थोड़ी उनके विश्राम करने का मन करता था। तो उस समय महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए उनको सुंदर सुंदर मटके में गंगा में शीतल गंगा जल से स्नान करते थे भक्त लोग, उनका महाप्रभु का उनको अभिषेक करते थे महाप्रभु। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे इस अभिषेक से। तो एक दिन महाप्रभु ने पूछा, शिवाज इतनी सुंदर व्यवस्था कौन कर रहे हैं, सुंदर सुंदर मटकों में शीतल गंगा जल सुगंधित गंगा जल की व्यवस्था कौन करते हैं। तो सुभाष ठाकुर ने कहा कि हमारे घर में एक दासी है, उसका नाम है दुखी, वो करती है। तो महाप्रभु ने जब नाम सुना दुखी, बोला दुखी, अरे इसका नाम दुखी क्यों रखे हो, इतनी सेवा कर रही है तो प्रसन्न है, इसका नाम आज से कर दो सुखी। तो उसके बाद से सबको उनको सुखी बोल के बुलाए। और जब देखिए महाप्रभु की विशेष कृपा हुई, तो उसके बाद शिवा ठाकुर को वो प्रणाम करते थे, अपनी दासी नहीं समझते। तो इस प्रकार शिवा ठाकुर से जो कोई भी जुड़े थे सबके ऊपर महाप्रभु ने कृपा की। शायद एक उनका दर्जी था, उनको भी महाप्रभु ने कृपा किया उनपे। तो ये है, बहुत बड़ी शिक्षा है कि किसी तरह अगर हम कोई महान भक्त से जुड़ जाए तो अवश्य कृष्ण हम पे कृपा करेंगे ही करेंगे। और कई सारी लीलाएं, एक सुंदर लीला आप सुने होंगे कि वो एक दूध पीता हुआ ब्रह्मचारी आया था, शिवाज ठाकुर को बार बार उन्होंने निवेदन किया कि मुझे दर्शन करने दीजिए महाप्रभु की लीला का। तो शिवाज ठाकुर ऐसा ठीक है, चुप के थोड़ी देर खड़े हो जाओ। तो महाप्रभु उसने पूछा इतना आनंद क्यों नहीं हो रहा है। तो उनको पता चला कि ऐसे दूध पीता, तो महाप्रभु ने बहुत क्रोधित हुए, अरे कोई दूध पी के मुझे प्राप्त कर सकता है, नहीं कोई मैं तपस्या द्वारा मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो लेकिन वो जो दूध पीता हुआ ब्रह्मचारी था उसके हृदय में फिर भी वो कृतज्ञ था, कह रहे जो भी हो मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मुझे थोड़े महाप्रभु के दर्शन हुए। फिर महाप्रभु ने जब देखा उनके अंदर ये भावना है तो उनको दोबारा बुला लिया, नहीं तुम आ जाओ, और तब से वो भी महाप्रभु के संगी बन गए। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर लीला शिवाज ठाकुर के घर में हुई। जो आखिरी लीला उनको बताऊंगा, जो बहुत ही स्पेशल लीला है, जो जिसको सुन के हमारे मन में बहुत प्रेरणा आनी चाहिए, वो ये वो कौन सा लीला है आपने सुना होगा। हाँ आप लोग अच्छे जानते हैं। तो शिवाज ठाकुर के घर में जब उनके बेटे का देहांत हो गया, तो लीला बहुत ही सुंदर लीला है और मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। तो हर दिन की तरह हर रात की तरह महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे शिवाज आंगन में, और खूब आनंद के साथ महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सारे भक्त उनके साथ नाच रहे थे गा रहे थे। तो जब ऐसा कीर्तन हो रहा था अचानक से कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो शिवाज ठाकुर तुरंत दौड़ते हुए अंदर घर के अंदर देखते थे क्या बात है। तो शिवाज ठाकुर नहीं चाहते थे कि महाप्रभु के कीर्तन में किसी प्रकार की कोई बाधा है। तो जब अंदर जाके देखिए तो देखिए कि उनके पुत्र का देहांत हो गया। सोचिए गृहस्थ एक कोई पिता के लिए एक पुत्र कितना कितना प्रिय होता है, लेकिन जब शिवाज ठाकुर ने देखा कि उनके पुत्र का देहांत हुआ है, ये कि शिवाज ठाकुर खुद बैठ गए रोने, नहीं तुरंत बोले अरे ठीक है कोई बात नहीं चुप हो जाओ रो मत, तुरंत चुप करा दिया अपने जो रोने की क्या बात है। जहां पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमारे घर में नित्य कर रहे हैं वहां कुछ अमंगल हो सकता है, कितना भाग्यशाली लड़का है हमारा, उसने ऐसे इस परिस्थिति में प्राण छोड़ा, जबकि स्वयं सचिनंदन वराह महाप्रभु हमारे घर में नित्य कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, वो सुनते हुए इस बालक ने अपना शरीर छोड़ा, इससे भला भाग्यशाली और कौन इस संसार में है। तो तुम आप हम सबको आनंदित होना चाहिए, रोने की क्या बात है, तो चुप हो जाओ। फिर सुभाष ठाकुर देखे कि भाई ये हो सकता है समझाने पर ना समझे, फिर भी रो रही थी। तो सुभाष ठाकुर ने क्या कहा, अगर चुप नहीं हो गए तो मैं खुद जाके अभी गंगा जी में अपना प्राण त्याग कर दूंगा। ये सुने तो सारे के सारे जो माता जी थे सब चुप हो गए, और फिर शिवाज वापस कीर्तन में आ गए मुस्कुराते हुए बिल्कुल। सोचिए इतना बड़ा उनके जीवन में इतनी बड़ी घटना कि शिवाज ठाकुर बिल्कुल आनंद में है और फिर से आगे महाप्रभु के साथ नित्य कीर्तन करने लगे। सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, लेकिन कीर्तन करते करते महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उनको लगा कि नहीं कुछ ना कुछ जरूर अमंगल घटना कुछ तो घटी है। तो कई घंटे ऐसे कीर्तन करते करते महाप्रभु ने पूछा भक्तों से, अरे कुछ कोई घटना तो नहीं घटी, कुछ कुछ हुआ है क्या। तो फिर किसी एक भक्त ने कहा कि हाँ हे महाप्रभु, शिवाज ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया। शिवाज ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया, कब हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कई घंटे हो गए, 6-7 घंटे हो गए, अरे मुझे बताया कोई क्यों नहीं? तो शिवाज ठाकुर बोले कि प्रभु आप जब कीर्तन कर रहे हैं तो इसमें मंगल की क्या बात है? तो जब ऐसे सुने महाप्रभु तो एकदम रोने लगे, जोर से रोने लगे महाप्रभु कि अरे शिवाज इतने मुझसे इतना प्रेम करते हैं शिवाज कि अपने पुत्र का देहांत हो गया फिर भी वो मेरे कीर्तन में बाधा नहीं आए, इससे जाके बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और सबको चुप करा दिया। तो महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे और उस समय कहते हैं कि अरे मैं इन भक्तों का साथ कैसे छोड़ू, ऐसे महाप्रभु ने बोले। तो ये किसका इंडिकेशन है? ऐसा क्यों कहते हैं महाप्रभु? क्योंकि वो बाद में संन्यास लेने वाले थे। तो जब भक्तों ने ऐसा सुना, रहे महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, भक्तों का साथ मैं कैसे छोड़ूंगा, तो पहली बार महाप्रभु ये इंगित करते हैं कि वो बहुत जल्दी संन्यास लेने वाले। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है, मैं सोचा था इसको विस्तार में पढ़ूं लेकिन कोई बात नहीं, आपको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता दिया। फिर भी एक एक दो श्लोक चैतन्य भागवत से पढ़ते हैं। तो इसमें तो भक्त लोग कहते हैं कि तुम्हारा आनंद भंग भय सिनी बात कहा रे उजाना नहीं करे न प्रकाश, क्योंकि भय था कि आपके कीर्तन के आनंद में कहीं कोई बाधा नहीं आई। तो जब महाप्रभु ने सुना शिवाज के बारे में तो भगवान रोने लगे और कहते हैं प्रभु बोले हेनो संग छाड़ी को कि मते ये तो बोली महाप्रभु लागिला कांदी से, रोने लगे महाप्रभु। पुत्र शोक ना जानी ये मोहर प्रेम हेनो तब संग मुई छाड़ी बो के मन, तो ऐसे भक्तों को मैं कैसे संग छोड़ूंगा जो कि पुत्र के मृत्यु पे भी तनिक मात्र भी शोक नहीं किए। और फिर महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे। और फिर महाप्रभु उस बालक के पास गए और पूछे कि तुम शिवाज के घर क्यों छोड़ के चले गए? तो महाप्रभु जब ऐसा कहे तो मरा हुआ बालक फिर से जीवित हो गया और कहने लगा प्रभु ये ना निर्बंध तुम्हार अन्यथा कर शक्ति अच्छा कहा। तो शिशु बोलने लग गया कि आपकी इच्छा सब कुछ हो रहा है, कुछ समय तक मैं यहाँ पे था, जितना समय मेरे भाग्य में लिखा था फिर मेरा समय आ गया इसी में चला गया। तो वो बालक कहता है कौन किसी का माता कौन किसका पिता, और फिर कहते हैं कि मेरा तो बहुत महान भाग्य था कि मैं शिवाज ठाकुर के घर में रहा और आपका दर्शन किया। और फिर वो बालक कहता है कि सपा सदर तुम्हारा चरण नमस्कार अपराध ना ली हो विदाय अमार, फिर कहते हैं आपके चरणों में और आपके पार्षदों के चरणों में मेरा प्रणाम करता हूँ और कोई अपराध मत दीजिएगा। तो इस प्रकार वो बालक फिर से शांत हो गया और फिर महाप्रभु स्वयं कीर्तन की और तो इस प्रकार महाप्रभु स्वयं कीर्तन की और सारे भक्त बहुत प्रसन्न हुए और शिवाज ठाकुर उनके चारों जो भाई हैं वो सब महाप्रभु के चरणों में गिर गए। और फिर महाप्रभु कहते हैं हे शिवाज चिंता मत करो, तुम्हारे आज से दो लड़के हैं, कौन कौन, नित्यानंद और गौरांग। तो ये देखिए शिवाज ठाकुर की महिमा है कि जिन पे महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए और कहते हैं मैं और नित्यानंद आपके दो पुत्र हैं। तो शिवाज ठाकुर की जय, पंचतत्व की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, सब प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
Thank you.